ओम शांति। आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल चर्चा, ड्रामा के ज्ञान को कैसे यूज करें। बहुत सुंदर ज्ञान ड्रामा का मिला है और इस ज्ञान के द्वारा हम अपने चित्त को शांत कर सकते हैं, चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, टेंशन को हल्का कर सकते हैं, अचल अडोल स्थिति बना सकते हैं। तो हम 10 पॉइंट्स निकालेंगे, भाई लोग उसमें हिस्सा लेंगे, जरा लेंगे ना, माताएं लेंगी हिस्सा। ड्रामा का गुह्य ज्ञान, जिसके फाइनल स्वरूप को बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा हो जाओ। जो साक्षी दृष्टा होंगे वही बाबा के साथ का अनुभव कर सकेंगे। बहुत सुंदर ये बात है। दूसरी बात, ड्रामा के ज्ञान को यूज करके हम अपने चित्त को जल्दी ही शांत कर सकेंगे और मन शांत होते ही हम बहुत शक्तिशाली बनने लगते हैं। मन शांत करने से केवल शांति ही मिलती है इतना नहीं, पर हम बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो हमें ये लक्ष्य भी बनाना है कि हमें अपने मन को शांत करना है ताकि आने वाले समय का भी हम सामना कर सकें। समय अच्छा आ रहा है या खराब? दो आवाज आई, खराब आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, दोनों ही ठीक हैं। क्योंकि कल्प का अंत है तो सारी बुराइयां, सारे विकार, सारे दुख चिंताएं भरती जा रही, बढ़ती जा रही हैं। और ब्राह्मणों के लिए प्रत्यक्षता का काल आ रहा है, संसार को मदद करने का समय आ रहा है, बहुत बड़ी चीज है। और जब मनुष्य दूसरों के काम आने लगता है तब उसे बहुत सुख मिलता है। जब मनुष्य दूसरों की ओर प्यासी नजरों से देखता है तो उसका सुख बहुत कम होने लगता है। पर सुख देने लगो, मदद करने लगो, दूसरों के कष्ट हरने लगो, बहुत सुख मिलता है। तो एक ओर परिवर्तन का समय आ रहा है, दूसरी ओर महाविनाश का समय आ रहा है। उसके बाद बहुत सुंदर समय आ रहा है जिसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोच के देखें हम सब, सतयुग कैसा होगा उसकी तो कल्पना भी मुश्किल है। जब बाबा कह देता है सोने की ईंटें बनेंगी, यहां तो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती, वहां सोने की ईंट भी फ्री मिलेंगी। तो सोचने की बात है, कैसी होगी वो दुनिया जिसके लिए बाबा कहते हैं जैसे यहां पत्थर और कंकर पड़ी रहती हैं, वहां हीरे पड़े होंगे। तो कितना सुंदर संसार है उसकी तो अभी कल्पना भी संभव नहीं है। वो भी हमारा आह्वान कर रहा है और प्रत्यक्षता का जय जयकार का समय भी नजदीक आता जा रहा है। संसार में दुख बढ़ेगा, इस देव देवियां प्रख्यात होंगी, अंत में प्रत्यक्ष होंगे बाबा। सभी ने सुना होगा मुरलियों में बाबा की प्रत्यक्षता अंत में होगी, क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष होना माना समाप्ति। जैसे ही सब धर्मों की आत्माएं उसे अपना पिता मान लेंगी, वो मेरा है, और चारों ओर से आवाज उठने लगेगी मेरा बाबा, सबको मुक्ति का वरदान मिल जाएगा, सब घर वापिस चलेंगे। देखिए बाबा भी कैसा है, जिसने उसको अपना कह दिया तुम भी चलो मुक्ति में, और जिसने थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लिया स्वर्ग, कैसा है देखो, सोचने की बात है। कितना प्यार है उसका हमसे, क्या क्या वो करना चाहता है हमारे लिए, क्या क्या देने आ गया है हम सबको। तो हम अपने से चिंतन किया करें, चिंतन परम आवश्यक है। सभी यहाँ आए हैं, माताएं भी, कोई ये ना सोचे हमसे चिंतन करना नहीं आता। बताओ किसको नहीं आता, मैं सिखा देता हूं अभी, एक मिनट में सीख जाएंगे आप। बोलो किसको चिंतन करना नहीं आता। माताएं कहती हैं भाई जी बुद्धि चलती नहीं, एक दो कोशिश कर रही हाथ उठाने की, पर आता नहीं माताओं से चिंतन करना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, आज आपको कोई बुरे वचन बोल के चला गया, कितना समय चिंतन होता है उसका, कितना समय, रोके नहीं रुकता। मन में मनन शक्ति की संस्कार है ही, चिंतन हमारा नेचुरल गुण है। हम जिस चीज को अपने ख्यालों में लाएंगे उस पे चिंतन चलता रहेगा। जिसके पास व्यर्थ चिंतन ज्यादा होता है उसका ही चिंतन नहीं चलता, क्योंकि बुद्धि की मन की सारी शक्ति उस चिंतन में नष्ट हो जाती है। तो हम सभी एक संकल्प ले लें इस ड्रामा में कि प्रत्यक्षता के काल में मुझे भी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करना है। करना है या देखना है, करना है। जिनकी पालना स्वयं भगवान ने की है लंबा समय, अब उनको संसार की पालना करनी होगी। बाबा कहते थे अव्यक्त में, अब तो देखो अव्यक्त की मुरलियां लगभग समाप्ति हो गई 2 साल से 3 साल से, लेकिन बहुत गुहे मुरलियां चली हैं बाबा की, उनकी सबको स्टडी करनी चाहिए। जैसे मैंने तुम्हारी पालना की, अब तुम संसार की पालना करो, ये बाबा कहते आए हैं। जैसे मैंने तुम्हें सुख दिया, तुम भी संसार को सुख दो, क्योंकि वो हमारा परम पिता और भक्तों के इस देव देवी कौन, हम सब, वो हमें माता पिता ही मानते हैं ना। तो जैसे बाबा से मिलकर हमें गुड फीलिंग हुई है, जन्म जन्म की प्यास मिट गई, आत्मा तृप्त हो गई, वैसे ही हमसे मिलकर हमारे भक्तों को होगी। हमें उसके लिए अपने को तैयार करना है, अपने को खजानों से भरपूर करना है, ताकि हमारी दृष्टि से दूसरों को तृप्ति मिले। ऐसा समय आएगा जिन्होंने बहुत अच्छा अभ्यास किया है, बाबा भी दिव्य दृष्टि की चाबी शुरू कर देगा, वो दृष्टि देंगे, दूसरों के चित्त शांत होंगे। आज या कल बाबा कह रहे थे ना, आज तुम में शांति की करंट बहुत है, याद है ना। जो भी यहां आता है कहता है यहां बहुत शांति है, हमें पता ही नहीं कि हम में शांति की करंट बहुत है। पता है सबको, हम में शांति बहुत है, बहुत शांति आ चुकी है, लेकिन क्योंकि हमारी इच्छा बहुत शांति की है, पीस हाउस बनने की है, इसलिए हमें अपनी शांति छोटी लगती है, और जरा सी अशांति हो जाए तो हमें वो सहन नहीं होती, क्योंकि हम बहुत बड़ी शांति के अनुभवी हैं। तो हमें ड्रामा के ज्ञान को यूज करके अपने चित्त को शांत करना है, अपनी स्थिति को महान बनाना है, साक्षी स्वरूप धारण करना है। अब पहली बार 10 पॉइंट्स निकालेंगे, माताएं डायरी लाई हैं, बहुत अच्छा है, लिख लो जो लिख रही हैं। पहली पॉइंट बोलो, वल्लभ भाई आज आप आए हैं, आप ही सुना दो। इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट। इस दृष्टि से यदि संसार के खेल को देखें, बड़ा आनंद आएगा। अपने परिवार के जितने मेंबर हैं उनके खेल को देखो, पांच हैं, ये सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। डिपार्टमेंट आपके साथ जो है उसमें सब को देखो, सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कैसे अंतिम समय में हम सब का मिलन हुआ है। देव कुल की आत्माएं जिन्होंने जन्म जन्म बहुत अच्छे साथ निभाए हैं वो अब साथी बन गए हैं। कैसा सुंदर खेल है। इस खेल की एक ब्यूटी बाबा ने बताई है, सुंदरता है वो इस खेल की। फिल्मों में भी वही सुंदरता होती है, एक समय का पार्ट दूसरे समय से नहीं मिलता, एक एक्टर का पार्ट दूसरे एक्टर से नहीं मिलता। तो हर पल पार्ट बदल रहे हैं, सबके अलग अलग हैं। हम क्यों सोचें कि सब हम जैसे हो जाएं? मन सोचता है ना, सब हम जैसे हो जाएं। सोचना तो अच्छा है पर पार्ट ही सबका अलग अलग है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, हल्के हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण शुरू से चलता आता था हमारे यहाँ कि किसी भी एक्टर का पार्ट अलग होता है और उसका अपना स्वरूप अलग, दो होते हैं ना। एक व्यक्ति को ड्रामा में क्रोध करने का पार्ट दिया गया है, वो अच्छे से अच्छा क्रोध करके दिखाता है ना, पर वो व्यक्ति वैसे तो ठीक ठाक होता है ना। हम लोग बहुत बार एक ड्रामा किया मधुबन में, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें माया और देवी गुणों का युद्ध होता था। और दैवी गुण जैसे ही, मतलब दैवीय शक्ति और आसुरी शक्ति, और दैवी शक्ति जैसे ही उन पर दृष्टि डालती थी वो डर के गिरने लगते थे। तो उसमें एक गुजराती भाई को क्रोध का पाठ दिया गया था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबका था। तो वो इतना अच्छा क्रोध करता था, बाहर आता था तो लोग कहते थे तुमने कहां से सीखा ये, तुम्हें तो आता नहीं है। तो देखो दो स्वरूप हो गए ना। तो हम भी अगर ये याद रखें, किसी का वर्तमान में कोई अवगुण, कोई दोष, कोई खराब रूप हमें दिखाई देता है, हम याद करें ये तो इसका ड्रामा में पार्ट है, असलियत में तो ये आत्मा बहुत अच्छी है। मुझे एक बाबा की बहुत गहरी बात याद आई, बिल्कुल शुरू की है, व्यक्त हुए बाबा। हमारे यहाँ एक सरदार जी रहते थे, बुजुर्ग, उन्हें गुस्सा बहुत आता था। तो अव्यक्त बाबा से मिले, बाबा बहुत मिलते थे हम सब मधुबन निवासियों को, बहुत ज्यादा। उसने बाबा कहा, बाबा मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसलिए मेरे से दूसरों को दुख दिया जाता है, क्या करूं मैं। बेचारा फील तो करता था वो भी, लेकिन आता था, उसकी नेचर थी, रोटी बनाता था, कभी टोली बनाने आता था, टेलरिंग भी करता था, कई सबके कई कई काम होते थे उन दिनों, एक ड्यूटी नहीं। तो बाबा ने उसको बहुत अच्छी बात कही, वो बात मैं आपको सुना रहा हूं, तब से मुझे वो याद रही। तुम किसी का भी वर्तमान स्वरूप देखते हो इसलिए दुख स्वरूप हो जाते हो, दुखदायी बन जाते हो। बाप सबका संपूर्ण स्वरूप देखते हैं इसलिए सुखदायी रहते हैं। तो तब हम ये प्रैक्टिस करते, बहुत हमारे साथ दो चार का ग्रुप तो तब भी था कि सबके पीछे उनका संपूर्ण स्वरूप खड़ा है। कई बार दिन में ये प्रैक्टिस, जिसे भी देख रहे हैं उसके पीछे यहाँ संपूर्ण स्वरूप खड़ा है। जैसे हमारा चित्र है ना, ब्रह्मा बाबा ऊपर श्री कृष्ण दिख रहा है, फरिश्ता दिख रहा है, ऐसे ही हम सब का संपूर्ण स्वरूप खड़ा है। तो ये बहुत सुंदर बात है इस ड्रामा में। और आगे चलें, इसी में एक चीज जोड़ दें, सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, इसलिए यहां किसी का कोई दोष नहीं है। इसने मुझे दुख दिया, इसने मेरे से बहुत बुरा किया, ये न होते तो हम जीवन में बहुत सुखी रहते, ये खत्म हो जाएगा ना। यहां किसी का कुछ भी दोष बोलो जरा नहीं है ना, सोच के देखो, उनको भी देख लो जिनके दोष ही दोष हमारी ख्यालों में हैं, इनका दोष नहीं है, ये अपना पार्ट बजा रहे। और आगे चलें, नंबर आप देते जाना, जो कुछ इस ड्रामा में हो रहा है, अभी दो तीन बातें बाबा कहते आज भी कहा, नथिंग न्यू, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, क्योंकि ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। आपने साकार मुरलियों में वो सुंदर बात सुनी होगी, किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हैं, इस ड्रामा को बदल नहीं सकते, क्या उत्तर दिया होगा, किसको याद है बोलो। नहीं, ये नहीं कहा था उसने, बाबा ने ये कहा था, ये ड्रामा बाप को बहुत प्रिय है। अब जो एक्यूरेट भी है और प्रिय भी है उसे बदले क्यों, बदले तो उसे जहां कुछ गड़बड़ हो, भाई ये चीज हमारे इस ड्रामा में गलत हो गई, ये एक्टर ने गलत बोल दिया, इसने एक्टिंग ठीक नहीं की, इसलिए इसको बदलो। पर यहां तो सब कुछ परफेक्ट है, वो तो हमारी दृष्टि कह रही है कि ये गलत है, भाई ये फलाने लोग बड़ा आतंक मचा रहे हैं, सबको मार देते हैं, इन्हें दया धर्म ही नहीं है, धर्म के नाम पे क्या हिंसा कर रहे, हम सोचते हैं ना, पर है ही विनाश का काल। गीता में कहा ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग अपने विनाश के लिए, अपने कुल के विनाश के लिए ही पैदा होते हैं, दुर्योधन के संकेत करके कहा कि वो अपने विनाश के लिए और अपने कुल के संहार के लिए ही पैदा होते हैं। उसके बाद धर्म स्थापना होती है तो कल्याणकारी हुआ ना। चलें आगे अगली बात पर, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, पर बात बड़ी गुह्य है, हमें तो दिखाई देता है ना कल्याणकारी नहीं है, गड़बड़कारी है ना, ऐसा कल्याणकारी नहीं है। मुझे एक हंसी की बात सुनाने को आ रही है, एक घर से फोन आया, सास फोन किया, मैं ज्ञान में हूं, मेरे लड़के की शादी हुई है, 6 मास हुआ है, लड़का अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता है। मैंने पूछा क्या बात है, मैंने कहा डिवोर्स इतना सस्ता हो गया आजकल, फटाफट देने लगते, छोड़ो छोड़ो तुम अलग हम अलग, वेस्टर्न कल्चर आ गई ना, अंग्रेजों की सभ्यता, वहां भी ऐसे ही होता है, नहीं बनी कल ही अलग हो जाओ, किसी किसी का डिवोर्स तो एक दिन में ही हो रहा है। मैंने कहा क्या बात है, कहा बहू बहुत बोलती है, हम सब तंग हो गए। मैंने कहा इतनी सी छोटी बात से आप डिवोर्स दे रहे हैं, जीवन की तो सोचो, जीवन छोटी चीज तो नहीं है, लड़की घर जाएगी अपने, उसका क्या बुरा हाल होगा ये सोच के तो देखो, मनुष्य को पता नहीं चलता ना, पर दुर्गति होती है, अपमानित होता है। मैंने कहा उसको समझाओ ना भाई, तुम्हारे इससे सब तंग हो रहे हैं, तुम थोड़ा कम बोलो, कि बहुत समझाया है, मेरा लड़का उसकी बात सुन सुन के डिप्रेशन में आता जा रहा है, अब मैं लड़के को बचाऊं या उसे रखूं। बहुत बोलने से उसका तलाक हो रहा है। तो ड्रामा पर आ जाएं फिर से, ड्रामा का हर सीन न्यायकारी भी है, ये भी अच्छी बात है, ये ड्रामा संपूर्ण न्यायकारी भी है, इसमें कुछ भी अन्याय नहीं हो रहा है, हैं? आनंददायक भी है अगर हम इसे साक्षी होकर देखें। और आगे चलें, पास्ट और फ्यूचर इससे जोड़ो, जो कुछ पास्ट हो गया, देखिए ड्रामा का ज्ञान हमें सुखी बनाएगा। जो पास्ट हो गया उसको फुल स्टॉप, क्योंकि वो 5000 साल पहले से रिपीट नहीं होगा। उसको रिपीट होने में 5000 साल लगेंगे। हम रोज रिपीट करते हैं, रोज पन्ने खोलते हैं उस डायरी के जो 10-20 साल पहले की है। तो संकल्प करें सभी, पास्ट को भूलना बहुत आवश्यक है जीवन में, है या नहीं? पास्ट का इफेक्ट यदि मनुष्य के ऊपर रहे तो कभी गम रहेगा, कभी भारीपन रहेगा, किसी को खुशी नहीं है जीवन में, ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं। अभी हम गुवाहाटी में गए थे और आसपास गए, कई अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं लोगों में। माताएं आती हैं, मुझे टेंशन में रहने की आदत पड़ गई है, क्या करूं? देखिए, खुद वो समझ रही है, मुझे टेंशन में रहने की आदत पड़ गई, सारा दिन मैं टेंशन में रहती हूँ। बच्चे स्कूल गए, अभी तक आए क्यों नहीं, पता नहीं ठीक पढ़ रहे होंगे या नहीं, कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे, कोई उन्हें मार पीट तो नहीं देगा, टेंशन में है। बच्चे हंसते हंसते खेलते खेलते शाम को आ जाते हैं, वाह ये तो सब ठीक ठाक है, मैं ही टेंशन में हूं, पति कब आएगा दुकान से, खाना बनाया पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं, बिना मतलब सोचने की नेचर। ये क्यों है? इसका एक कारण पास्ट का इफेक्ट है। समझते हैं ना, इंग्लिश के शब्द बोल गए, जो बीत गया उसका प्रभाव यहां छाया हुआ, रख लिया है अंदर, उसके कारण वर्तमान में चीजों को हल्का लेने का संस्कार नहीं रहा। हल्का लें, अपने को दुखी करना सोच सोच के, बिना मतलब परेशानी और चिंताओं में रहना, इससे जरा ऊपर उठें। बहुत चिंताएं करती हैं कई माताएं, पहले अपनी चिंता थी, शादी हुई चिंता बढ़ गई, बच्चे हुए और बढ़ी, और फिर कहां बढ़ी? बोलो बुजुर्ग माताएं बहुत बैठी खुश, यहाँ की बुजुर्ग माताएं बहुत खुश नजर आ रही आज मुझे। फिर पोतरों की धोतरों की चिंताएं, चिंता करने से कुछ होगा? मैं माताओं को सदा एक चीज सिखाता हूं, वो बहुत अच्छी है, कि अगर आप चिंता कर रहे हैं तो आपसे कमजोर वाइब्रेशन उन सबको जा रहे हैं जिनकी आप चिंता कर रहे हैं, उनका हाल बिगड़ता ही जाएगा, क्योंकि इस समय आप शक्तिशाली हैं। इस समय जिसने पवित्रता धारण कर ली उसके पास बहुत कुछ है, जिसने थोड़ी भी शांति जीवन में ले आई उसके पास बहुत कुछ है। इसलिए चिंता करने से आपके द्वारा दूसरों में गिरावट आएगी। आप अच्छे वाइब्रेशंस दो, उन्हें आत्मा देखो, इतना तो कर सकते हैं ना, ये सब बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कलयुग के अंत में जो कुछ हो रहा है उससे अच्छा भला और क्या हो सकता है, सोच के देखो। शास्त्रों में कलयुग के अंत के लक्षण तो ऐसे लिखे हैं, इसलिए कई शास्त्रवादी कहते हैं अभी कहां कलयुग का अंत है, तो आएगा, मनुष्य मनुष्य को कच्चा खा जाएगा। हम उन्हें कहते कच्चा ही तो खा रहे, पकाते कहां है, कच्चा ही खा रहे हैं। आप सुनते होंगे सरकारी स्कूल और कॉलेजों का हाल बिगड़ता जा रहा है, सरकार बहुत संपदा उन पे नष्ट कर रही है, खर्च कर रही है और वो नष्ट हो रहा है। हर व्यक्ति चाहता है मैं सरकारी नौकरी पालू, टीचर बन जाऊं ताकि पढ़ाना ना पड़े। तो कलयुग का अंत, झूठी डिग्री लेकर अच्छे अच्छे लेक्चरर बन गए, पढ़ाना आता ही नहीं, मिल रहे हैं 80,000 मुफ्त के, ये अंतिम समय, खेल चल रहा है, होना ही है ये सब। हम पास्ट के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करें। सब भाई बहने गहन चिंतन करेंगे, कुछ भी हुआ हो इस जीवन में, पास्ट का तो हमें पता नहीं, कुछ भी हुआ हो उसे हल्का करो, पूरा हो गया ना, किसी ने आपको नष्ट भी किया है ना, अब भगवान के पास आ गए, आनंद ही आनंद है। किसी ने आपका सब कुछ छीन लिया, अब तो सब कुछ मिल गया ना, मिल गया है नहीं माताओं को, इसलिए पास्ट को हल्का कर देना है, पास्ट में नहीं रहना है। बुरा पास्ट ही तो हमें वर्तमान में भगवान के पास ले आया है या नहीं। कई बहुत दुखी होकर बाबा के पास आए हैं, दुख न होता तो देखते भी नहीं बिल्कुल बाबा की ओर, ऐसे बहुत लोगों की कहानी है। ठीक है, और भविष्य के लिए क्या याद रखेंगे ड्रामा का, इंद्र प्रताप बताएंगे, प्रसिद्ध है वो बात, तो मूल्यों में आती रही है। संदीप तुम बता दो, चलो तुम हिल डुल रहे हो, जो कुछ है अच्छा तो होगा, ये भी अच्छी बात है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन ड्रामा पहले से ही फिक्स है ना, भविष्य भी आप ही हमें वो उधर ले जाएगा जिधर हमें जाना है। ये संकल्प हमारे चित्त को शांत करेगा, भविष्य की चिंताओं से हमें मुक्त करेगा। तो सोचें, भविष्य फिक्स है, हमारा पुरुषार्थ भी उस अनुसार चलेगा ही। देखो जिसका भविष्य मान है, आप ही वो सवेरे उठेंगे ही, ड्रामा उन्हें सोने ही नहीं देगा, होगा या नहीं। और जिसका अच्छा नहीं है, कोई ना कोई बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है, हमें सोचना है हमारा भविष्य तो बहुत सुंदर है, क्योंकि जिसके हाथों में हमारा भविष्य है वो हमारा है, वो हमें बहुत महान बनाना चाहता है, वो भाग्य बांटने आया है, वो भाग्य विधाता है और वो हमारा है। तो इससे भविष्य की कोई भी चिंता रहेगी नहीं, चिंता करने की आदत भी नहीं होनी चाहिए। चिंता करने की आदत, मेरे बच्चों का क्या होगा, जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका बोलो, ये तो मैं रोज सुनाता हूं, रोज सुनना सुनाना है, उसका हम निर्माण करेंगे। हमारे संकल्पों में बहुत बहुत शक्ति है, ये हमें भूलना नहीं है। ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष के मिलन से चलता है। पुरुष माना आत्मा, आत्मा में मन, मन के संकल्पों के वाइब्रेशन से प्रकृति में भिन्न भिन्न तरह की रिएक्शन करते हैं और वही चीजें लौट कर हमारे पास आती हैं। इसलिए जैसा भविष्य हम अपना देखना चाहते हैं, बच्चों का देखना चाहते हैं आप, वैसे ही संकल्प करो। माताएं अपने घरों में अपने छोटे बच्चों को देखकर संकल्प किया करें, हमारे घर में ये महान आत्मा आई है, इसका भविष्य बहुत सुंदर होगा। सभी माताओं को जान लेना चाहिए, बच्चा 3-4-5 साल तक आपके संकल्पों के, आपकी भावनाओं के, आपकी दृष्टि के वाइब्रेशंस को तेजी से ग्रहण करता है। इसलिए अपने छोटे बच्चे पोत्रों को देखते हुए अच्छे संकल्प किया करें, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा उनके भविष्य पर, और हम भविष्य के बारे में निश्चिंत होंगे। और आगे चलें, अपने को मैं इस ड्रामा का हीरो एक्टर हूं ये स्वीकार कर लें, तो ड्रामा की सुंदरता किसके आधार पे होती है, फिल्म की सुंदरता हीरो एक्टर्स के आधार पे। तो इस विश्व की ब्यूटी हमारे आधार पर है, हमारी स्थिति के आधार पर है, हम इस ड्रामा के हीरो एक्टर हैं। मुझे एक बात और याद दिलानी है सबको, आज की मुरली से अभी रात होने जा रही है, आज से सब उसकी प्रैक्टिस करेंगे। रात को सोने से पहले सब कुछ सब सुना देना, सारा सवेर से शाम तक अच्छा किया वो भी तुमको अर्पित, कुछ गड़बड़ हो गई वो भी तुमको अर्पित, कल से वो नहीं होगी, संकल्प कर लेंगे तो चित्त हल्का हो जाएगा। ये बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया था कि बाप बच्चों को रोज कहते हैं, बहुत ही पावरफुल बात कही थी, धर्मराजपुरी से बचना है तो रोज रात को अपने मन का सारा बोझ बाप के आगे रख दो। फिर बाबा ने कहा लेकिन बच्चे थक के आते हैं तो तुरंत सो जाते हैं, गुड नाइट करना भूल जाते हैं, जिसमें कहा था याद हो आपको, तुम गुड नाइट करो या ना करो, मैं तो करने आता हूँ, ये कहा था आता हूँ, ये प्रथा साकार समय से है। आप में से कईयों को पता होगा, थोड़े से बच्चे आते थे ना तब तो 50-60 बस इतने ही आते थे मधुबन में, बाबा और मामा रोज मुरली के बाद रात को सभी के कमरों में जाते थे, सबको दृष्टि देते थे, पूछते भी थे सब कुछ है ठीक ठाक है, बच्चे सो रहे हैं ठीक आराम है। वो प्रथा अब तक चली आ रही है, हम सबके पास रोज बाप दादा आते हैं, स्वीकार कर लें सभी इसको। इसलिए अच्छी स्थिति में सोना है, अच्छे संकल्पों से सोना है, बाबा को सब कुछ सुना के सोना है, हल्का करके सोना है अपने को, ताकि आज का बोझ कल कंटिन्यू न रहे। बहुतों के साथ जीवन में यही हो रहा है, आज का बोझ कल, आज और कल का परसों, फिर तीनों दिन का चौथे दिन, और ऐसे बढ़ता जाता है। बचेंगे इससे, हमारे पास ये बहुत बड़ा ज्ञान है, इसका यूज करेंगे। एक सुंदर बात जो मुरलियों में रोज बाबा कहता है लगभग, अब ये ड्रामा नहीं पूरा हुआ, तुम्हारा 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, अब तुम्हें वापिस चलना, फील करेंगे हम जा रहे हैं वापिस अपने धाम। इस ड्रामा में तुम जैसा भाग्यवान कोई नहीं, सतयुग में थे तुम, आज या कल भी था ना, सूर्यवंशियों को ही सबसे अधिक पावन कहेंगे, भले इस त्रेता में भी पावन है परंतु सतयुग में पहले में सबसे पावन। एक दिन मैंने देखा यहाँ, मैंने सोचा बाबा कहता है कि पहले जन्म से ही तुम्हारा हर दिन नीचे उतरती आएंगी ना कलाएं, कलाएं माना शक्तियां प्योरिटी, सब नीचे उतरेगा। जैसे मनुष्य कला को इस तरह से समझ ले, बच्चे ने जन्म लिया, अब वो बड़ा हो रहा है, कलाएं बढ़ रही हैं, अब जब बुढ़ापे की ओर चलेगा तो कलाएं कम होने लगी, बस यही कलाएं हैं। तो मैंने सोचा ये थोड़े थोड़े दिनों में कैसे अंतर पड़ेगा, कि पहले जन्म से दूसरे जन्म में एकदम अंतर पड़ेगा। तो पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था, सबने देखा है, यहाँ देख लेना फिर से 19 तारीख को, अगर बादल न हुए कितना सुंदर लगता है यहाँ से, बड़े शहरों में उसका पता नहीं चलता, एकदम चित्त को आकर्षित करता है। एक दिन कम हुआ, फिर मैंने देखा सचमुच उसकी जो चमक थी आकर्षण था वो था ही नहीं एक ही दिन में। अभी तो कुछ भी कला कम नहीं हुई, एक ही कला कम हुई है। ऐसे ही सतयुग में हम सबके साथ भी होगा। अब लास्ट बात, इस ड्रामा में हम सभी को सबसे सुंदर भाग्य और अवसर मिला, कौन सा अंत में मिला, भगवान सामने, जो कभी सोचा नहीं था वो देखने को मिला। एक गीत है ना वही बजा देना संजय लास्ट में, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेंगे, जिसको देखने के लिए नैन तरसते थे उसको रोज देखेंगे, जिसे मिलने के लिए क्या क्या करते थे, भक्ति, त्याग और तपस्या, उसे जब चाहे मिल सकते हैं। ऐसा सुंदर भाग्य पाठ हम सभी आत्माओं का इस ड्रामा में है। तो वर्तमान के इस समय का हमें पूरा आनंद लेना है। तो सभी तैयारी करेंगे। पहली बात फिर से अंत में, प्रत्यक्षता के काल में मुझे हीरो पार्ट बजाना है, प्यासों की प्यास बुझानी है, बेसहारों को सहारा देना होगा, बीमार लोगों के रोग हरने होंगे, ये बड़े बड़े काम आ रहे हैं, दुखी अशांत आत्माओं को सुख देना होगा, बहुत बड़े कार्य करने हैं, उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करो। मुझे एक बात याद आ गई, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये 75 में बाबा के संदेश थे, जैसे बाप विश्व रक्षक है, तुम भी मास्टर विश्व रक्षक हो। ये पार्ट विनाश काल में हम सबका भी चलने वाला है। तो ऐसा अपना एक विजन बनाएंगे, मैं आत्मा बहुत पावरफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान ऊपर हूं, और जैसे मेरी किरणें भी सारे विश्व की रक्षा कर रही हैं, जैसे सेवा व छत्र छाया है विश्व रक्षक है, हम भी मास्टर विश्व रक्षक हैं। तो लक्ष्य की बहुत ऊंचाई बना दें सभी अपने जीवन में। जितना लक्ष्य महान होता है, छोटी छोटी बातें उत्सलोगन है ना हमारे यहाँ, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। ठीक है, साथ में मोह ममता को छोड़ने की बात है। लास्ट पॉइंट आज की मुरली में था, विजयमाला में कौन आएंगे, और एक बात, जो हर्षित रहेंगे देह से डिटैच हो जाएंगे। अश्रत्तों के बारे में बाबा ने कहा है, आप मुरली पढ़ सकते हैं 69 दिसंबर की, बहुत सुंदर मुरली है वो, शायद 20 दिसंबर ही है, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं, लंबी मुरली है, बहुत लंबी, उन दिनों की वो सबसे लंबी मुरली है। पुरानी बहनों की दादियों की भट्टी थी, 80 दादियों ने हिस्सा लिया था उसमें, तो उसमें अव्यक्त बाबा आए थे। बाबा शुरू में आते थे ओपनिंग करने, तो उसमें अश्रत्नों के बारे में दो बातें मैं सुना देता हूं। अश्रतन वो होंगे जो एक सेकंड में अशरीरी हो जाएं। ये नहीं एक सेकंड में हुए और दूसरे सेकंड देवान में आ गए, एक सेकंड में हुए और हो गए। दूसरी बात, उन आत्माओं की मृत्यु भी सर्विसेबल होगी, उन्हें मृत्यु पर सर्विस का मेडल मिलेगा। अब वो बात मोह के लिए जो मुझे याद आई थी आपको सुना देता हूं। किसी ने बहुत अच्छा मकान बनाया, इतना अच्छा कि उसका उस मकान में बहुत मोह हो ही जाता है, बहुत सुंदर बनाया, धन लगा दिया। एक साल बाद ही उसे कैंसर हो गया और एक साल में उसकी मृत्यु हो गई, 27 साल याद में चलते हुए। वो बाबा के पास गई शरीर छोड़ने के बाद, उसने बाबा कहा, मुझे आपने क्यों बुलाया है, मुझे तो उस मकान में रहना था, अभी कहा जाओ, और वो आत्मा भटक गई। अब दूसरे के तन में आई, उसने कहा मुझे 13 साल तक शरीर नहीं मिलेगा, सच्ची घटना है, अभी की जो हम होके आ रहे हैं उस एंटर में हम गए, मुझे 13 साल तक शरीर नहीं मिलेगा। अब क्या किया, सबको हम सावधान करना चाहते हैं इससे, अब क्या किया, जो और आत्माएं भटक रही हैं उन्होंने इसको अपने ग्रुप में मिला लिया, बहुत आत्में भटक रही हैं और वो चाहती हैं हमारा ग्रुप अच्छे से अच्छा हो। मिला लिया और वो पांचों आ गई थी। अब देख लें, मकान का मोह जो मिट्टी है, उसने उस आत्मा को 13 साल के लिए भटका दिया है। भटकना छोटी चीज नहीं होती। बाहर बरसात हो रही हो, किसके पास घर भी न हो, खाने को भी न हो, कपड़े पहनने को न हो, सोने की जगह न हो, सोचो उसका हाल, पानी पीने को न हो, ये हाल होता है भटकने वालों का। तो मुझे कहा था मां कि तुम ये बात जरा सबको सुना दिया करो कि मोह का क्या होता है, मोह से क्या होता है, दुर्गति हो गई। मैं ज्यादा खोल के नहीं बता रहा हूं। तो सभी देह से डिटैच हो, इसीलिए बाबा कहता है ऐसा पुरुषार्थ करो अंत में एक के सिवाय कुछ याद नहीं, तो जाएंगे सीधे अपने धाम, अन्यथा यहीं, और विनाश काल में फिर उन्हें बहुत कष्ट होगा। वो कष्ट अगर 6 मास का भी है तो वो बहुत भयानक होंगे। 6 मास एक एक सेकंड भारी होगा, 6 मास तो बहुत लंबा हो गया। इसलिए सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, घर जाना है, सब कुछ यहीं छोड़ना है और सब कुछ पाकर जाना है। ओम शांति।
कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।